नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र।
आज आखिरकार जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर तमाम चर्चाएं थी कि पाकिस्तान की मेजबानी में भारत खेलेगा या नहीं, उस पर से पर्दा हट गया है, वो गतिरोध जो है वो खत्म हो गया है और अब यह तय हो गया है कि भारत की टीम इस टूर्नामेंट में खेलेगी और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी।
देखिए, ये सिर्फ मेरे ख्याल से ये चीज थी जो कि ये खबरों में सुर्खियों में बहुत टाइम से है, ये एक कन्फर्मेशन आ गई है, पुष्टि हो गई है इसकी। तो ये चीज कम से कम ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीसी ने इतने दिनों बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। बीसीसीआई ने अभी तक नहीं दिया है, पीसीबी ने भी नहीं दिया है। तो ये कमाल की बात है कि टूर्नामेंट आपका आज से ठीक 2 महीने बाद है और जो रूल्स कह रहे थे कि 90 दिन पहले आपको जो है शेड्यूल आपको जारी करना पड़ता है, ये सब उस सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये, और ये वही चीज़ आई है जो काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हुई है। और इसके बारे में हम लोग अभी और भी बात कर सकते हैं।
बिल्कुल, पहले आप सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म, भारत अपने मैच तटस्थ देश में खेलेगा। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। घुड़सवार राजू सिंह ने एशियाई महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया और फातोरदा में आईएसएल में कल एफसी गोवा और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। तो चैंपियंस ट्रॉफी से ही शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की घोषणा के अनुसार टूर्नामेंट में भारत के सभी मैच तटस्थ स्थान पर खेले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान जाने से इनकार करने के फैसले के बाद अब भारत एक तटस्थ स्थान पर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलेगा। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में ही होगा। भारत और पाकिस्तान 2024-2027 के बीच आईसीसी टूर्नामेंट में सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान भी भारत की यात्रा नहीं करेगा। आईसीसी के इस फैसले के बाद अब कुछ ही दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शेड्यूल सामने आ सकता है। आईसीसी के अनुसार ये व्यवस्था फरवरी और मार्च में होने वाले आगामी आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी पर भी लागू होगी। साथ ही भारत द्वारा आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और भारत श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2026 पर भी लागू होगा। इसके अलावा 2028 में पाकिस्तान में होने वाले महिला 2020 विश्व कप का आयोजन भी हाइब्रिड मॉडल में होगा। पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था और वो इस बार उसे बचाने की कोशिश करेगा। 8 टीमों के इस आयोजन में मेजबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो राहत की बात यह है कि इस पर से आखिरकार पर्दा हट गया है, भारत इस टूर्नामेंट में खेलेगा और एक अच्छी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को देखने का मौका क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए ये चीज तो हमको पहले दिन से पता था कि भारत वहां नहीं जा रहा है और अचरज की बात यह है कि इतना जो कि एक आम क्रिकेट फॉलोअर को जब पता है ये चीज़ें, आईसीसी की जो टीम भी जो पाकिस्तान में थी कुछ टाइम पहले जब वो देख रहे थे कि क्या ये यू नो वेन्यूज़ वगैरह तैयार हो पाएंगे नहीं, तब भी पाकिस्तान के जो बोर्ड है उन्होंने ये चीज़ उठाने की कोशिश की कि भाई इंडिया का स्टेटस क्या है। जब प्लेयर्स एग्रीमेंट साइन हो गए, जबकि टीम का जो एक पार्टिसिपेशन का एक होता है, मेंबर्स पार्टिसिपेशन का एक फॉर्म होता है बकायदा जो कि सबको साइन करना पड़ता है, जब उसके बावजूद अगर सब कुछ हो गया, आपको ये हाइब्रिड का या ये सब बहुत पहले हो सकता था। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि हम बिल्कुल 100 दिन के पास आएँ और फिर भारत एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, और उस स्टेटमेंट के देने के बाद भी जो कुछ भी हुआ है सिर्फ ये हुआ है कि पाकिस्तान ने कहा अच्छा आप लोग हमारे कंट्री नहीं आएंगे, हम भी आपके कंट्री नहीं आएंगे। सिर्फ हाँ या ना की बात थी, ये बात तो कभी हो ही नहीं सकती थी कि इंडिया और पाकिस्तान को आपने अलग अलग ग्रुप में रख दिया सो दैट कम से कम ये नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स की जिद है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहेंगे और इनका मैच किसी छुट्टी वाले दिन होगा, मतलब क्योंकि वो इतना पैसे दे रहे हैं तो वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ 8 टीमें ले ली और आपने कहा कि चलिए साहब अब जो भी जिस ग्रुप में भी जाए, ऐसा नहीं है। आपको इंडिया पाकिस्तान मैच चाहिए क्योंकि इसमें रेवेन्यू जो हम इकोनॉमिक्स देखते हैं, कॉमर्स देखते हैं, वो जरूरी है। तो तो अभी जितने स्टेक होल्डर्स थे अब मेरे ख्याल से सबको खुश हो जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अगर इंडिया फाइनल तक पहुंचता है
जी।
तो पाकिस्तान की ये क्या मेजबानी है कि आपके टोटल 15 मैचेस में से आप सिर्फ 10 मैच होल्ड कर रहे हैं, इंडिया के 3 लीग मैच बाहर, और अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल खेलता तो वो भी बाहर
जी।
तो ये एक जो है ये किसी भी होस्ट के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात, मतलब कोई अच्छी बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये पॉलिटिकल रियलिटी है जो भी हमारा जैसे भी एक यू नो अभी जो सिचुएशन है हम सिर्फ उसको देखें तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। इंडिया का स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया अभी तक, और ICC को ये बात पहले से पता थी, जितने पार्टिसिपेटिंग नेशन है उनको पता थी, मगर जिस तरह से इस बात को खींचा गया है ये मेरे ख्याल से अवॉइडेबल था, ये चीज बहुत पहले ये डिसीजन लिया जा सकता था
जी। उधर भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इस समय मुंबई में चल रहा है। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय महिला टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 3 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। 3 मैच की श्रृंखला में अभी तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर हैं, और अब जो स्कोर है वो 18 ओवर और 4 गेंदों के बाद जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है 200 रन हो गए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यानी आज भारतीय टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है राकेश जी, क्योंकि 200 का स्कोर और वो भी महिला 2020 क्रिकेट में बहुत बड़ा स्कोर का है।
बड़ा स्कोर और उससे भी कम बार वो चेज हुआ है
जी।
और अगर हम यही सीरीज देखें, बिकॉज ये सारे मैचेस एक ही जगह हो रहे हैं नवी मुंबई में, तो पहला मैच इंडिया ने जब 195 बनाया 200 के बिल्कुल करीब, तब वो मैच इंडिया जीती है 49 रन से
जी।
दूसरा मैच में भी हमने पहले बैटिंग की और 159 रन बनाए हमने, और वेस्ट इंडीज ने वो मैच 9 विकेट से जीता
जी।
तो उसके बाद उन्होंने अभी टॉस जीतने के बाद उन्होंने शायद यही सोचा कि हम इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सही सोच थी बिल्कुल, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से क्यों बाहर आएंगे जब आप चेस करके जीते हैं दो दिन पहले। तो लेकिन 48 घंटे में इतना चेंज आ गया है कि उसी विकेट पे हमने ऑलरेडी अब 9 गेंदें बाकी हैं, और जो स्कोर है 6 गेंदें हैं और ऑलरेडी 202 पे 3। तो लास्ट ओवर है, बैटर्स हमारे सेट हैं, ऋचा घोष खेल रही हैं, राघवी खेल रही हैं, और कप्तानी इस गेम में जो है वो है स्मृति मंधाना की, क्योंकि कप्तान एज यू नो इंजर्ड है, नहीं खेल पाएंगे।
उन्होंने भी लाजवाब पारी खेली है,
बहुत जबरदस्त 77 उन्होंने बनाया है। तो जो पेस उन्होंने सेट किया, हालांकि जो दूसरी ओपनर हैं वो अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन ओवरऑल जो है ये स्कोर जो है इसको हम मैच विनिंग बोलते हैं, और 5 गेंदे बाकी है और भारत का स्कोर 208, क्योंकि आखिरी ओवर की पहली गेंद पे छक्का पड़ चुका है
जी। उधर कुआलालंपुर में लड़कियों के अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 80 रन बनाए। भारत के लिए आयुषी शुक्ला ने 3 जबकि सोनम यादव ने 2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट पर 86 रन बनाकर मैच जीत लिया। गोंगाडी त्रिशा 58 रन और कप्तान निकी प्रसाद 22 रन बनाकर नाबाद रहीं। सुपर 4 की अंक तालिका में भारत 3 में से 2 मैच में जीत के साथ 5 अंक लेकर पहले स्थान पर है। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला का 4th टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। दोनों टीमें अभी श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। इस श्रृंखला के परिणाम का दोनों टीमों के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। सुनते हैं क्या है इस समय गणित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने का।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में कल तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने का मतलब है कि अगर भारत दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर नहीं रहना चाहता तो उसे अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अपने बचे दोनों मैच जीतने होंगे। भारत की 2 जीत से उसका जीत का प्रतिशत 60.53 हो जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 2-0 से सीरीज जीतने के बाद भी 57.02% अंक ही ले पाएगा। दूसरी ओर अगर भारत 1 टेस्ट जीता है और 1 ड्रॉ करता है तो उसके 57.02% अंक होंगे। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया तभी उनसे आगे निकल सकता है जब वे श्रीलंका को 2-0 से हराएं, तब ऑस्ट्रेलिया के 58.77% अंक हो जाएंगे। अगर भारत 2-1 से सीरीज जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को 1-0 के अधिक अंतर से हराना होगा, या दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान से कम 0-1 से हार जाए। अगर सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो तब भारत 55.26% अंक हासिल कर पाएगा, तब ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से कम 1-0 से हार झेलनी होगी या दक्षिण अफ्रीका को पाकिस्तान से 2-0 से हारना होगा। अगर सीरीज 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त होती है तब भारत 53.51 जीत प्रतिशत पर समाप्त करेगा। दक्षिण अफ्रीका को तब दोनों टेस्ट हारने होंगे या ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से सीरीज 1-0 से हारनी होगी या 0-0 से ड्रॉ करनी होगी। अगर दोनों सीरीज ड्रॉ होती है तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के 53.51% अंक रह जाएंगे। भारत इस चक्र में अधिक सीरीज जीतने की वजह से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन श्रीलंका 2-0 से जीतता है तो वो भारत से आगे बढ़ जाएगा। अगर भारत 1-2 से सीरीज हारता है तब भारत के 51.75% अंक हो जाएंगे और वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा। तब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचेंगे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो ये था अंकों का गणित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के एक दिन बाद भारतीय ऑफिस स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आज स्वदेश लौट आए। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थानीय अधिकारी अश्विन को बाहर लेकर आए। आईपीएल के अगले सत्र में वह चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए अगले महीने प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य समारोह आयोजित करेगा और इसका आयोजन उत्सव 12 जनवरी 2025 को शुरू होगा, जिसका समापन 19 जनवरी 2025 को ऐतिहासिक स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम के साथ होगा। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 21 दिसंबर से होगी। इस टूर्नामेंट के लिए संजू सैमसन को केरल की टीम में जगह नहीं मिली है। उधर मनीष पांडे को कर्नाटक की टीम में जगह नहीं दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज बाएं हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पाकिस्तान के खिलाफ शेष एक दिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। घुड़सवार राजू सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ एफएआई की सीसीआई 3-स्टार प्रतियोगिता में 2 बार पोडियम पर जगह बनाते हुए थाईलैंड के पटाया में अगले साल होने वाली एशियाई महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बात फुटबॉल की, फातोरदा में इंडियन सुपर लीग आईएसएल में कल एफसी गोवा और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। अंक तालिका में अभी मोहन बागान शीर्ष पर है जबकि गोवा की टीम 4थे स्थान पर है। ये रिपोर्ट सुनते हैं।
आईएसएल के अहम मुकाबले में जब कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो मोहन बागान का लक्ष्य शीर्ष पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की होगी, तो वहीं गोवा इस मैच को जीतकर 4थे स्थान की अपनी वर्तमान स्टैंडिंग से ऊपर जाना चाहेगा। मोहन बागान सुपर जायंट 11 मैचों में 8 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार से 26 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर है। वहीं गोवा ने अपने पिछले 11 घरेलू मैचों में से प्रत्येक में गोल किया है। उनके पास सबसे लंबे समय तक घरेलू गोल स्कोरिंग का अपना आंकड़ा पाने का अवसर होगा। एफसी गोवा 11 मैचों में 5 जीत 4 ड्रॉ और 2 हार से 19 अंक लेकर तालिका में 4थे स्थान पर है। एफसी गोवा के लिए इस सीजन में 9 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल दागे हैं। एफसी गोवा के हेड कोच मैनेलो मार्क्वेज का मैरिनर्स के खिलाफ रिकॉर्ड 12 मुकाबलों में से सिर्फ 3 जीत 5 ड्रॉ और 4 हार का रहा है। मैरिनर्स 2 गोल करते ही आईएसएल सीजन में 12 मैचों के बाद अपने उच्चतम गोल आंकड़े की बराबरी कर लेंगे। जेमी मैक्लारन ने 4 और जेसन कमिंग्स, सुभाशीष बोस और मनवीर सिंह ने 3-3 गोल किए हैं। मोहन बागान सुपर जायंट आईएसएल 2024-25 में दूसरे सबसे सफल टैकल वाली टीम है। आईएसएल में इन दोनों टीमों के बीच 8 मुकाबले हुए हैं। एफसी गोवा ने 2 बार जीत हासिल की है जबकि मोहन बागान सुपर जायंट 5 बार जीते हुए हैं, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। गोवा के हेड कोच मैनेलो मार्क्वेज का भी मानना है कि मोहन बागान में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सितारों का अच्छा मिश्रण है जो उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाता है। उधर मैरिनर्स के स्पेनिश हेड कोच जोस मोलिना ने कहा है कि उनकी टीम मैरिनर्स की मानसिकता हर मैच में अंत तक लड़ने की है। इस मुकाबले में उनका ध्यान आक्रमण के साथ साथ बेहतर बचाव पर भी होगा। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
थाईलैंड के हुआइन में भारतीय गोल्फर अजितेश संधू अंतिम लम्हों में डबल बॉगी और बोगी करने के बावजूद एशियाई टूर क्वालिफाइंग स्कूल के अंतिम चरण के 3रे दौर के बाद संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। उधर भारतीय महिला टीम ने 217 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों के बाद। क्या लगता है आपको मैच का परिणाम किधर जाएगा?
ये तो अब इस स्टेज से तो भारत बिल्कुल फेवरेट है जीतने के लिए, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में नॉर्मली आप 200-200 रन देखते नहीं है, बहुत आसान नहीं है। और आज इंडिया ने 7 छक्के भी मारे और रिचा ने उसमें 5 छक्के मारे और आखिरी 2 ओवर में हमने 31 रन्स देखे, तो बहुत बखूबी बहुत ही अच्छे अंदाज में भारत खेला ये मैच
जी। और राकेश रावजी स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया
दोस्तों, हमें भी दीजिए आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।